प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन में नित्य प्रवाह रूप से चल रहे सत्संग क्रम में शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का विचार चल रहा है, जिसके तृतीय मंत्र पर हम लोग चिंतन कर रहे थे। तीन प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं, उत्तम ज्ञान, मध्यम ज्ञान और अधम ज्ञान। सात्विक, राजस और तामस भेद से करके गीता में जिसको कहा, वही जो तामस ज्ञान है, जो अधम ज्ञान है, उससे ऊपर उठना है और मध्यम ज्ञान की ओर जाना है। मध्यम ज्ञान से ऊपर उठकर उत्तम ज्ञान की ओर अग्रसर होना है। इसलिए जिस स्थान पर जीव पड़ा हुआ होता है, उस स्थान के दोष आदि का निरूपण जब तक नहीं होगा, वहां से ऊपर उठने की उसको इच्छा ही नहीं होगी। सामने वाले मकान की विशेषता जब तक हमें मालूम नहीं होगी, हम जिस घर में रहते हैं उसको ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। इसलिए पहले सामने वाले के घर का ज्ञान होना चाहिए कि मेरा भी वैसा घर हो। यही कारण है कि सर्वोत्तम जो स्थिति है उसका श्रुति ने सबसे पहले वर्णन किया है। जहां तुम बैठे हुए हो वो तुम्हारे लायक जगह नहीं है। तुम कहां रहने लायक हो, तुम अपने अस्मिता को, अपनी स्थिति को, अपने स्वरूप को समझो। तब उसके लिए सबसे पहला मंत्र आया था, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधक कस्य स्विधनम। मानव श्रुति वहां यही कह रही है कि तुम ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां पर तुम्हारा विनाश न हो, अपने आप की जहां पर रक्षा हो उस जगह पर तुम्हें पहुंचना है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, जहां बैठे हुए हो उसका त्याग करो। जिस देहात्मवाद में पड़े हुए हैं वहां से ऊपर उठो और अपने आप की रक्षा करो, अपने स्वरूप में आ जाओ, वो तुम्हारी सही जगह है। और यहां तक आने के लिए यदि अपने आप को असक्षम समझते हो कि इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस जगह पहुंच जाए, तब अपने आप की स्वयं रक्षा नहीं कर सकते हो, तब तुम्हारी रक्षा करने में जो समर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, उस ईश्वर की शरणागति लो, उस ईश्वर का आश्रय लो, जिस ईश्वर के अनुग्रह से, जिसकी कृपा से तुम उसके लायक बन जाओगे। एक छोटा सा बालक शायद ये सोचता भी नहीं होगा कि मैं भी पिता बनूंगा क्या। 5 वर्ष के बालक के मन में यह कल्पना नहीं हो सकती है। लेकिन जो पिता है उनका आश्रय लेने वाला बालक निश्चित रूप से एक न एक दिन वो स्वयं किसी का पिता बन जाता है, क्योंकि पिता की शरण ली है, पिता का आश्रय लिया है, पिता ने शिक्षा दीक्षा आदि के द्वारा उसको उस काबिल बना दिया है कि आज स्वयं पिता बने। इसी प्रकार से भगवान की शरण, भगवान का आश्रय, जीवन प्रभु को समर्पित कर देने पर चित्त शुद्धि के द्वारा जो प्रथम स्थिति है अपने आप की रक्षा, ईशावास्यम इदम सर्वम में जो कहा, उस स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। परंतु ईश्वर की शरणागति लेने के लिए भी, ईश्वर के लिए कर्म करने के लिए भी, हम जिस भोगवादी जीवन में जी रहे हैं उस भोगवादी जीवन से हमें जरा ऊपर उठने की जरूरत है। जिस स्थिति में रह रहे हैं वो तम प्रधान स्थिति है, अविवेक पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, देह के साथ में हमने जो आत्मभाव किया है ये हमारे लायक नहीं है, हमारे लिए शोभनीय नहीं है, इससे हमें ऊपर उठना चाहिए। ये जो हमारा लौकिक ज्ञान है, एक व्यवहारिक ज्ञान है, शरीर को ही मैं मेरा और शरीर वालों को ही मेरा समझ करके बैठ जाते हैं, इस भाव से ऊपर उठाने के लिए जिस स्थिति में बैठे हुए हैं उसके निंदा यहां पर तृतीय मंत्र में जिसको अधम ज्ञान बताया गया है, जो ज्ञान उचित नहीं है, गीता में जिसको तामस ज्ञान बताया गया है, उससे ऊपर उठाने के लिए श्रुति बहुत सुंदर मंत्र दे रही है। आइए इस तृतीय मंत्र का पुनः एक बार उच्चारण करें और फिर अर्थ गांभीर्य में हम लोग प्रवेश करेंगे। असुर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ते एके चात्महनो जना असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः। जो अज्ञान अंधकार से आवृत लोक हैं वो असुर संबंधी लोक हैं, और उन लोकों में कौन निवास करते हैं? एके चात्महनो जनाः, जो कोई आत्मघाती लोग होते हैं। यहां से प्रयाण करने के अनंतर उन्हीं लोकों में जाते हैं जो लोक अज्ञान अंधकार से आवृत है। उन्हीं लोग असुर संबंधी लोक हैं, जितने भी असुर हैं वहीं जाकर के रहते हैं, और ये लोग भी जो आत्मघाती हैं उन्हीं के मंडली में सम्मिलित हो जाते हैं। जहां अज्ञान अंधकार है, घोर अंधकार, किसी प्रकार का आत्म संबंधी बोध नहीं हो सकता, जिसके पवित्र अर्थ को कल हम लोग चिंतन कर रहे थे, असुर्या नाम ते लोका में असुर्य लोक किसको कहा गया है, परिभाषा देख रहे थे कल हम लोग असुर की। दो प्रकार से इसकी व्याख्या हुई है, औपनिषद व्याख्या है और वैयाकरण व्याख्या है। उपनिषद के अनुसार कल बताया गया था असुर किसको बोलते हैं, अददानम अश्रद्धदानम अयजमानम आहुति असुरः, जो देता नहीं है उसको असुर बताया गया है, शोभन दान नहीं है उसको असुर बताया गया है, जो श्रद्धावान पुरुष नहीं है उसको असुर बताया गया है, जो यजमानवान पुरुष नहीं है उसको असुर बताया गया है। जीवन में देव पूजा सत्संगति जिसने नहीं किया है, दान जिसने नहीं किया है उसको असुर संज्ञा दी गई है। व्याकरण व्याख्या इसके कल देख रहे थे, असुषो रमन्ते इति असुराः, जो व्यक्ति अपने ऐन्द्रिक सुख में ही रमण करता है, इंद्रियों को बोलते हैं असु, और उन इंद्रियों का जो विषय है उपलक्षित, इंद्रियों से उपलक्षित उनका विषय होगा, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है, बस इन विषयों में ही पड़े हुए हैं, अर्थात सारा जीवन भोग के लिए ही जी रहे हैं, जबकि जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है। भागवत में शौनकादि ऋषियों के शूद्र जी से निवेदन करने पर शूद्र जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर दोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यया आत्मा संप्रसिद्धति। मनुष्य का धर्म वो नहीं है जो जीवन में हो रहा है, कर रहे हैं, खाओ कमाओ और पशु की तरह मर जाओ, ये कोई मनुष्य जीवन का ध्येय नहीं होता है। राजस्थान में एक बहुत अच्छे संत हुए, राजस्थानी में उनके बहुत अच्छे अच्छे पद हैं, वो कुंडलिया जो छंद होता है, बहुत सारे छंद लिखे उन्होंने। मारवाड़ी में उन्होंने लिखा है, कहे दास सगराम मूढ़ मानुष तन पायो, पर भज्यो न सिरजन हार, कमायो सोयो खायो, सोयो खायो कमायो रहो विषयन में होशियार, आयो चौरासी भोग कर फिर जावण न तैयार। इस प्रकार की जो स्थिति है, एक मूढ़ एक अविवेकी पुरुष को मनुष्य का शरीर मिल तो गया, लेकिन मानव देह की कीमत उसने समझी नहीं। कमाने खाने और सोने में जिंदगी चली गई, सारा जीवन इसी में जा रहा है। इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसको कहते हैं वो असुर है, इंद्रियों के विषयों में ही रमण कर रहा है। बताइए कौन सी भूमि में जी रहा है, वो कहां पड़ा हुआ है। इसलिए यहां से ऊपर उठाने के श्रुति कहती है, वो जहां तुम हो ये तुम्हारे लायक नहीं है, अज्ञान अंधकार से आवृत लोक है, तुम अपने आप को समझने की कोशिश करो, पहचानो कि मैं कौन हूं। जहां पर हमारी दृष्टि है वहां पर अपना ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए उससे ऊपर उठाने के लिए श्रुति कहती है। इसको लोक शब्द दिया गया है, और वो लोक है जहां पड़े हैं। लोक की बात सुनते ही ऐसा एक भाव बनता है व्यक्ति के अंतस्थ में, क्योंकि पुराण पढ़ते हैं और पुराणों में विभिन्न लोकों का वर्णन है। भागवत का द्वितीय स्कंध आप देखेंगे तो उसमें 14 लोकों का वर्णन आता है। भगवान विराट के शरीर में 14 के 14 लोक विद्यमान है, ऐसा वहां वर्णन आया। अन्य भी ग्रंथों में पुराणों में 14 लोकों का वर्णन आता है, और जो 14 लोक माने जाते हैं उसमें बीच वाला लोक कौन सा है, हम जिसमें बैठे हुए हैं ये लोक है ना, ये पृथ्वी लोक है, ऐसा ही लगता है। और फिर पुराणों में पढ़ते हैं कि लोक ऊपर के हैं और नीचे के हैं, सप्त लोक ऊपर के हैं, सप्त लोक नीचे के हैं, हम जहां हैं वहां ऊपर वाले लोकों का प्रारंभ है। इसका मतलब अगर बीच में हम हैं, 7 ऊपर हैं और 7 नीचे हैं, और बीच में जहां हम हैं तो लोक कितने होने चाहिए, 15 होने चाहिए, पर हमने 15 लोक आज तक पढ़ा नहीं है। सप्त लोक ऊपर के माने गए हैं, भू भुव स्व जन तप महत जन तप और सत्य लोक, ये 7 ऊपर के लोक माने गए, भूर भुव स्व मह जन तप और सत्य लोक। हम किस लोक में बैठे हैं, भूलोक में बैठे हुए हैं, हमारी गिनती ऊपर वाले लोकों में है, नीचे वालों में नहीं है। नीचे के जो लोक हैं, अतल वीतल सूतल तलातल महातल रसातल और पाताल लोक, ये सप्त नीचे के लोक माने गए हैं। भगवती श्रुति कहती है कि आपकी गिनती नीचे वाले लोकों में नहीं है, ऊपर वालों में है, इसलिए नीचे वाले लोकों में जाने की अपेक्षा तुम्हें ऊपर वाले लोक में जाना चाहिए। अभी जहां पड़े हो अज्ञान अंधकार से आवृत लोक हैं, तुम थोड़ा ज्ञान प्रकाश करके ऊपर उठने का प्रयास करो। अब ऐसा लगता है कि इस जीवन में तो यही है, पर हो सकता आज विज्ञान बहुत बड़ी तरक्की कर रहा है, चंद्रमा पर तो चला गया है, शायद मंगल पर भी चला गया, कितने ग्रहों पर चला गया है इंसान, तो हो सकता है कभी ऐसा कोई विकल्प तैयार हो कि सत्यलोक की यात्रा भी होने लगे, वहां का भी वीजा मिलने लग जाए, मनुष्य लोक से ही तो जाया जा सकेगा। कितना दूर होगा वो सत्यलोक, कल्पना करिए सज्जनों, वो लोक बहुत दूर नहीं है। ये जितने भी पौराणिक लोकों का वर्णन किया गया है, लोक शब्द का अर्थ होता लोक्यते अवलोक्यते भुज्यते इति लोक, जहां पर व्यक्ति अपने स्थिति का अवलोकन करता है, भोग करता है, वो लोक ही तो है। ये सारे के सारे लोग इसी जीवन में आते हैं। आप लोगों ने योग वाशिष्ठ आदि पढ़ा होगा, वहां सप्त भूमिका का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। जो ज्ञान की सप्त भूमिका होती है, याद होगा आप वेदांत प्रिय लोग हैं, शुभ इच्छा सुविचारणा, तनोमानसा सत्वापत्ति, असंशक्ति पदार्थाभाविनी और तुरीयगा, ये सप्त भूमिका ऊपर की मानी गई है। सात ज्ञान की भूमिकाएं मानी गई है। सचमुच में जो ये लोक शब्द यहां पर आ रहा है, ये लोक शब्द यही कह रहा है कि यदि तुम्हें जाना है तो उन लोकों में जाना है। ये लोक ठीक नहीं है जो नीचे के लोक हैं। आओ पहले अधम की बजाय जो श्रेष्ठ लोक है उनका विचार करके देखते हैं, क्योंकि भगवती श्रुति का क्रम यही है। उत्तम ज्ञान को पहले लिया है, फिर मध्यम और फिर कनिष्ठ अधम ज्ञान को सामने रखा है। अच्छी चीज का वर्णन पहले होना चाहिए, खोटी चीज पहले ही आकर के दिमाग में बैठ जाएंगी तो अच्छी चीज को कहां बिठाएंगे। इसलिए अच्छे लोग का विचार पहले अपने मन में रखना चाहिए। व्यक्ति को ऊर्ध्व जो लोक है, श्रेष्ठ लोक है, उनकी प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। यदि हम भूलोक में बैठे हैं तो भुवा में जाना है, भुवा में पहुंच गए हैं तो स्व में जाना है, और स्व में पहुंच गए तो महत में जाना है, महत में पहुंच गए तो जनलोक में जाना है, फिर तप और फिर सत्यलोक की प्राप्ति करनी है। इसके लिए यहां पर सुंदर बताया गया है, ये जो लोक है जिसमें हम बैठे हुए हैं, यह है भूलोक। भूलोक ज्ञान की जो सप्त भूमिका है, उसमें पहली भूमिका क्या बताई गई है? शुभ इच्छा। शुभ इच्छा का अर्थ होता है जितने भी विषय है उनसे वैराग्य प्राप्त हो जाए, शब्दादि विषयों के प्रति राग न रहे, वहां से वैराग्य प्राप्त हो, विषयों में वैराग्य हो, और जो जगत की आत्मा है उसका परोक्ष ज्ञान हो करके उसको जानने की एक जिज्ञासा प्रकट हो जाए। शुभ इच्छा का अर्थ है उस शोभनीय तत्व परमात्मा को पाने की इच्छा मन में पैदा होना। इसलिए पहली जो भूमिका है ये भू सत्तायाम से भू शब्द बनता है। जो जगत की एक सत्ता है, जगत का एक आधार है, जिसके बिना जगत के किसी भी पदार्थ की हम सिद्धि नहीं कर सकते। बहुत बार सुनते हैं कि देखो अस्तित्व के बिना किसी को सिद्ध नहीं किया जा सकता है, है 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 करके सब जगह हम अनुभव करते हैं। वो जो एक सत्ता है करके जिसका ज्ञान होता है, वो जो सत्ता है वही हमारा जानने का विषय है, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। तो कर्म और उपासना करके जो द्वितीय मंत्र में बताया गया है, वो कर्म उपासना आदि के द्वारा जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है और परोक्ष रूप से परमात्मा का ज्ञान पाया है, परोक्ष ज्ञान से मैं परमात्मा का ज्ञान पाया कि परमात्मा है, वो इस जगत की कोई संचालक एक सत्ता है जो दुनिया को चला रही है, वो जिस सत्ता को हमने शास्त्र के द्वारा गुरुजनों से सुन करके जाना है कि कोई सत्ता है जो इस जड़ जगत को भी संचालित कर रही है, वो है परमात्मा, वो है ब्रह्म तत्व है। उस परमात्मा को जानने की जो जिज्ञासा होती है उसी का नाम है यहां पर शुभ इच्छा। अभी हम कहां बैठे हुए हैं? इस पहली भूमि में बैठे हुए हैं, इस भूलोक में बैठे हुए हैं। प्रतिदिन 7:30 बजते बजते यहां आने का पूरा प्रयास रहता है। किस लिए? कि उसे परम सत्ता को जान लेवे। जानने के लिए आते हैं हम अभी शुभ इच्छा में है, हमारी पहली भूमि है उस सत्ता को जानने के लिए। इसलिए पहला जो लोक है वो भूलोक है, और उस भूलोक में रहने वालों की पहचान है जिसके भीतर में शुभ इच्छा होती है। वो लोग हैं भूलोक में रहने वाले जो शुभ इच्छा परमात्मा को, उस सत्ता को जानने की अभिलाषा, एक इच्छा अपने मन में रखते हैं, और जिसके भीतर में उस परमात्मा को पाने की इच्छा भी प्रकट नहीं होती है, ये इस संसार में धरती के ऊपर रहते हुए भी समझ लो कि वो इस धरती में नहीं है, वो नीचे वाले लोक में जी रहा है, जिसका वर्णन तो फिर करेंगे। ये क्रम ऊपर का देखिए पहले। ये है भूस लोक, जो जहां पर हमारे भीतर में एक शुभ इच्छा होती है, और शुभ इच्छा के बाद में भूमिका में आया है सुविचारणा। सुविचारणा आया है, शुभ इच्छा हुई, विषयों से वैराग्य हुआ, उस परम सत्ता को जानने की इच्छा हुई। अब वो परम सत्ता कौन है, उसके लिए शास्त्र में पहला अधिकारी का जो निरूपण आया है, आप वेदांत शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वेदांत का अधिकारी कौन है? साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति वेदांत का अधिकारी है। पहले उसको मनुष्य जीवन का महत्व समझ में आ जाता है शुभ इच्छा में, कि मानव जीवन उस परमात्मा को जानने के लिए ही मिला है। ये समझ आई तब तक तो हम पहली भूमि में हैं, लेकिन जब हमारे भीतर में सुविचारणा आती है तो हम भूव लोक में चले गए हैं, द्वितीय लोक में चले जाते हैं, जिसमें विवेक, वैराग्य, समाधि, सठ संपत्ति और मुमुक्षा होती है, जिसके उपनिषद में वर्णन आया है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। आत्मा वारे द्रष्टव्य, ये जो भावना है आत्मा को देखना चाहिए, यह पहली भूमि है शुभ इच्छा। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य जो बताया गया है कि फिर उसको श्रवण करो। क्यों? कि बिना श्रवण किए आत्मा अनात्मा का विवेक संभव नहीं है। सत्संग से विवेक की जागृति होती है। मानस आप पढ़ते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। विवेक कैसे जागृत होता है? सत्संग से ही जागृत होगा, सुविचारणा से ही जागृत होगा। इसलिए आत्मा वारे श्रोतव्य के बाद में, अदृष्टव्य के बाद में आया है श्रोतव्य, श्रवण करना चाहिए। भागवत में बहुत सुंदर श्लोक आया महात्म्य प्रसंग में, सत्संग की बड़ी भारी महिमा बताई है कि जीवन में कोई दुर्लभ है तो सत्संग होता है। तो सत्संग के द्वारा विवेक जागृत हो, विवेक से फिर वैराग्य, वैराग्य से षट संपत्ति जो साधन है वो अपने जीवन में आए, मुमुक्ष आए, ये चारों के चारों साधन सुविचारणा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें श्रवण और मनन आया है। श्रवण साधन और मनन साधन, सत्संग में श्रवण करो और श्रवण करके आत्मा अनात्मा का विवेक प्राप्त करो। आत्मा अनात्मा का विवेक प्राप्त करके और फिर अनात्म पदार्थों की आसक्ति हटे, आत्मा को जानने का विशेष, अनात्मा से वैराग्य हो और आत्मा को जानने की विशेष जिज्ञासा प्रकट हो, उसके लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए श्रम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये साधनों की जरूरत पड़ती है। ये मनन के अंतर्गत आएंगे साधन भी और विचार भी। तो आत्मा वारे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, श्रवण करना और उसका मनन करना, ये है सुविचारणा। यदि हमारे भीतर में विवेक आया है, विवेक ने वैराग्य को जन्म दिया है और वैराग्य उपरांत समदमादि षट संपत्ति जीवन में आ रही है और एक मुक्त होने की ही एकमात्र इच्छा रह गई, कुछ भी संसार के पदार्थों को पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। समझ लिया कि सब नाशवान है, मिथ्या है, तब एकमात्र उस अविद्या से निवृत्त होने मात्र की एक इच्छा रह जाती है। इसलिए यहां पर उसको बताया गया है सुविचारणा। इस स्थिति में आ गए तो समझ लो कि हम दूसरे लोक पर चढ़ चुके हैं, हम पृथ्वी लोक से, भूलोक से ऊपर उठ चुके हैं, हम भूव लोक में चले गए हैं, विशेष लोक की प्राप्ति हुई है। उसके अनंतर तीसरा लोक आता है स्वलोक। स्वलोक तैतरीय श्रुति आप देखोगे तो स्वलोक को स्वलोक भी बोला, स्वर, स्वर्ग होता है कि नहीं, स्वसे ही स्वर्ग बनता, स्वर शब्द है, और स्वर जो लोक है उसकी जो जहां पर गति करके प्राप्त किया जाता है, चूंकि वो कर्म का फल है इसलिए उसको बोलते हैं स्वर्ग लोक है। और स्वर्ग लोक की स्थिति का कटश्रुति में सुंदर वर्णन किया है कि स्वर्गे लोके न भयम किंचन नास्ति न तत्र तोम न जरया विभेति। ओहो क्या वो स्वर्ग लोक है जहां कोई भय नहीं है, मरने का कोई डर नहीं है, बुढ़ापे आदि का कोई भय नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि वो शरीर भाव से सर्वथा ऊपर उठ जाता है, वो स्वर लोक है, वो स्वलोक है जिसको बोलते हैं ज्ञान की भूमिका में तनुमानसा। और वेदांत में उपनिषद में जसिको कहते हैं निधिध्यासन, तनुमानसा भूमिका, निधिध्यासन की स्थिति और स्वलोक की प्राप्ति का एक ही अर्थ होगा। अब बताइए कहां ऊपर के लोक हैं? ऊपर का अर्थ यहां पर स्थान तो ऊपर नहीं है, ऊपर का अर्थ है यहां पर श्रेष्ठत्व से ऊपर है। जैसे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ऊपर अनुशासन करने वाला द्वितीय श्रेणी कर्मचारी होता है, द्वितीय श्रेणी कर्मचारी को अनुशासित करने के लिए प्रथम श्रेणी कर्मचारी होता है, ठीक इसी प्रकार से एक के बाद एक श्रेष्ठत्व को बताने में तात्पर्य है। यहां पर लोक का स्थान से श्रेष्ठत्व नहीं है। तीसरी जो उसकी भूमिका आती है वो है सत्वापत्ति। ये क्या? तनुमानसा। तनुमानसा का अर्थ होता है वहां पर जो तनु शब्द है दो अर्थ में आता है, तनु विस्तारे धातु से बना है, तो एक तो वहां अर्थ होगा कि विस्तार के अर्थ में है, दूसरा तनु शब्द का अर्थ होता है तुच्छ क्षणिक। जैसे एक शब्द का प्रयोग करते हैं हमारे हिंदी भाषा में तनिक शब्द, तनिक शब्द होता है, तनिक का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल कम। जो निधिध्यासन है एक ब्रह्माकार वृत्ति बनाने के लिए, अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करते हुए हमारी मन की वृत्तियां इधर उधर जो भटक रही थी वहां से कमजोर होते होते और एक प्रवाह में लगा दिया, एक धारा चल रही है जैसे तेल की धारा सीधे एक निश्चित स्थान पर गिरती है। ये निधिध्यासन की स्थिति में जो हमारी मनोवृत्ति है वो इतने तनु हो जाती है, इतने कृश हो जाती है, इतने कमजोर हो जाती है कि वो बाहर बिखरती नहीं है। भिन्न भिन्न विषयों का जो चिंतन करना होता है उसमें तो उसका विस्तार होता है। आप किसी पेड़ को, छोटे पौधे को आप उखाड़ करके देखिए, उसकी जो मूल जड़ होती है उसके अतिरिक्त उसमें सैकड़ों प्रकार से छोटी 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 जड़ें निकली हुई होती है और इतना विस्तार करती हैं। प्रसिद्धि है कि वृक्ष जितना ऊपर की ओर फैलता है उतना ही वो वृक्ष नीचे भी जमीन में फैलता है, उतना ही उसका विस्तार होता है। जड़ें कितने फैलती हैं परंतु सारे की सारी जड़ें, एक मैन जो जड़ होती है उसकी मूसलाधार जड़, मूलधार जड़ जो होती है उसके आधार पर फिर जड़ें फैलती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो अविद्या है, हमारा जो अज्ञान है, यह समझ लो कि मूल जड़ है। और अनेक प्रकार की जो वासना की जड़ें हैं, गीता के 15वां अध्याय में और क्या किया, अधश्च ऊर्ध्वं पृष्ठतः तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा। ये जो वासनात्मक जड़ें हैं इतनी फैली हुई है, इतनी फैली हुई है, शब्द को लेकर के, स्पर्श को लेकर के, रूप को लेकर के, रस को लेकर के, गंध को लेकर के, भूत को लेकर के, भविष्य को लेकर के, वर्तमान को लेकर के, हमारी वासना कितनी बिखरी हुई है। जब ब्रह्मात्मत्व आत्मा एकत्व का चिंतन करते करते श्रवण और मनन के अनंतर जब हम लोग निधिध्यासन करते हैं तो निधिध्यासन शब्द का अर्थ ही होता है निश्चयन ध्यातव्य निधिध्यासितव्य। आचार्य शंकर लिखते हैं कि निधिध्यासन का अर्थ होता है कि निश्चय रूप से ध्यान करना। जैसे हमारी वृत्ति किसी एक विषय पर टिक जाती है जिसको हम बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं, हमारा मन वहां पर टिक जाता है, भागवत में उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति धनुष बाण का जो बाण होता है वो उस बाण की नोक को घिस रहा है, पेनी कर रहा है, तीक्ष्ण कर रहा है, और उसी वक्त एक राजा की सवारी उसके शॉप कार्यालय से बाहर से निकल गई, बड़े बैंड बाजों के साथ में, गाजे बाजे के साथ में निकली है, लेकिन उस व्यक्ति का ध्यान उधर नहीं गया, इतना तल्लीन था कि वो बाण की जो नोक है उसको पेनी करने में लगा हुआ था। तो जिस प्रकार से एक बाण घिसने वाला बाण की नोक को पेनी करने में तल्लीन हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से निधिध्यासन की स्थिति में व्यक्ति जो बिखरी हुई वासनाएं हैं उन जड़ों की तरह है, उन सारी बिखरी हुई वासनाओं से अपने मन को हटा करके एक जगह पर केंद्रित कर लेता है, एक ब्रह्म में केंद्रित कर लेता है कि ये जो सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म श्रुति ने जिसका वर्णन किया है वो मेरी आत्मा है, वो मैं स्वयं हूं। तत्वमसी महावाक्य से श्रुति ने जिसका उपदेश दिया है मैं उसको अनुभव कर रहा हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, एक धारा कि ये ब्रह्म तत्व मैं हूं, ये निधिध्यासन की स्थिति है। उस स्थिति में ये होता है कि जो उसकी वासना की जो जड़ें होती हैं वो क्रिश हो चुकी है, उनको बल नहीं मिल रहा है, वो एक जगह केंद्रित हो जाता है। तो ये जो तनुमानसा होती है उनमें जो मनोवृत्तियां हैं वो इतनी तनु हो जाती है, तनिक हो जाती है, क्रिश हो जाती है कि मन उसकी वृत्ति एक ही जगह पर टिक जाती है, उसको निधिध्यासन बोलते हैं। तो श्रोतव्य मंतव्य के बाद में निधिध्यासितव्य बताया, उसको तृतीय लोक के रूप में बताया गया है, स्वलोक, स्वलोक बताया गया है, जहां तनुमानसा है, जहां स्वर्ग है, जहां स्व है। क्यों? वहां पर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। स्वर्गे लोके न भयम किंचन नास्ति न तत्र त्वम न जरया विभेति। वो तृतीय लोक है जहां पर कोई भय नहीं रहता है, निधिध्यासन में कोई भय नहीं है। कारण कि भय तो तब होता जब हम इसे शरीर से संबंध जोड़ते, हमारा तो चिंतन ब्रह्म से है, अभय से है, अद्वय से है, उसके साथ संबंध होने के कारण शरीर आदि के भय से निवृत्ति हो जाती है। न जरया विभेति, अरे बुढ़ापे का भी डर नहीं है, क्या बुढ़ापा कर लेगा। वो शरीर से ऊपर उठ करके ब्रह्म भाव का चिंतन कर रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसलिए वो स्वलोक में पहुंच गया है, वो स्वर्ग में चला गया है, वो तृतीय लोक में चला गया है। निधिध्यासन करने वाला, तनुमानसा वाला अपने स्वलोक में गति कर चुका है, कहीं स्थान से ऊपर नहीं जाना पड़ रहा है परंतु अपनी स्थिति से ऊपर उठना पड़ रहा है। अपनी स्थिति में आने के लिए जहां बैठे हैं उससे हमें ऊपर उठने की जरूरत है। ये लोक चल रहे हैं, इसलिए श्रुति यहां पर कहती है लोक है, यदि आपको लोक में जाना है तो इस प्रकार के पूर्व जो मंत्रों में बताया गया है आत्मलोक, उस आत्मलोक को पाने के लिए ऊर्ध्वगति होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नीचे के लोकों में जाना पड़ेगा। भूर भुव स्व और उसके बाद में महलोक आता है, और ज्ञान की जो भूमिकाएं होती हैं उसमें चतुर्थ भूमिका आती है सत्वापत्ति, सत्व की आपत्ति होती है। सत्व का दो अर्थ यहां पर करिए, सत्व का अर्थ होता है सत्व गुण। निधिध्यासन के द्वारा सत्व गुण की इतनी वृद्धि हो जाती है, निधिध्यासन में ही वृद्धि बिल्कुल हमारी तीक्ष्ण हो चुकी है। निधिध्यासन की स्थिति को कठश्रुति ने बहुत अच्छे ढंग से कहा, दृश्यते त्वग्रिया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शे भी। वो तनुमानसा में यही स्थिति होती है, बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो गई, अब हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया, इतना निर्मल हो गया है, सत्व आपत्ति चित्त की अत्यंत निर्मल अवस्था आ गई है। वो जो विक्षेप दोष था निधिध्यासन काल में, उसे स्वलोक में मन का विक्षेप भी समाप्त हो गया है। मल तो गया पहले ही, जो विक्षेप था निधिध्यासन के द्वारा उस विक्षेप दोष की भी निवृत्ति हो गई है। अब सत्व आपत्ति आ गई है, चित्त हमारा बिल्कुल दर्पणवत निर्मल जल की तरह हो गया है, या शरद ऋतु का जो पानी होता है और वायु रहित स्थान में रखा हुआ हो तो इतना निर्मल, इतना स्वच्छ, इतना प्रसन्न होता है, हम अपने शक्ल उस पानी में देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो मन है वो मन अत्यंत निर्मल हो जाता है। सत्वापत्ति, और जब सत्व की आपत्ति होती है तो जो सत तत्व है उसकी उपलब्धि हो जाएगी, दोनों काम एक साथ होंगे। दर्पण का साफ होकर के स्वच्छ होना और स्थिर होना, दर्पण का साफ स्वच्छ और स्थिर होना, जो ही दर्पण स्थिर होगा तो क्या होगा, ज्ञान प्रकाश, अविद्या आवरण है उसकी निवृत्ति हो गई। अत्यंत सत्व सात्विक अवस्था में, इसलिए कि ज्ञान गीता में लिखा है सत्वात संजायते ज्ञानम, ज्ञान कहां होगा, जब चित्त की अत्यंत सत्व अवस्था आती है, सत्व गुण आता है तो उसे सत्व गुण से ही ज्ञान पैदा होता है। निधिध्यासन के अनंतर पूर्णतया सत्व प्राप्ति होने पर ज्ञान उपलब्ध होता है और ज्ञान का परिणाम है परमात्मा का साक्षात्कार। जैसे दर्पण का साफ करना, दर्पण को स्थिर करना और दर्पण के ऊपर पड़ा हुआ आवरण को दूर कर देना, अथवा यूं समझो कि अंधेरे को मिटा देना, अपने शक्ल दिखना स्वाभाविक है। दर्पण साफ है, दर्पण स्थिर है, लेकिन जिस रूम में दर्पण टंगा हुआ है वहां अंधकार है, वो दर्पण अपनी शक्ल हमको दिखा नहीं सकता, वहां प्रकाश की जरूरत है। जो चतुर्थ भूमिका है सत्वापत्ति, क्योंकि वहां पर चित्त इतना निर्मल हो चुका है, इतना निर्मल हो चुका है कि वहां ज्ञान प्रकाश प्रकट हुआ है, उससे यह हुआ सत्वापत्ति, उस सत्तत्व परमात्मा की आत्मा रूप से अनुभूति होती है। इसलिए चतुर्थ जो भूमिका है, चतुर्थ भूमिका में ही ब्रह्म का साक्षात्कार माना गया है, ब्रह्म साक्षात्कार माना गया है। उस लोक को यहां बताया गया है वो महलोक है, वो ब्रह्म का ही लोक है, वो परमात्मा लोक है। मह शब्द परमात्मा के अर्थ में आता है। कठोपनिषद आप देखिए, कठश्रुति में बहुत सुंदर एक मंत्र आया है, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, जो शरीरों में रहते हुए भी अशरीर है, जो अनवस्थ है, परिवर्तनशील है, उसमें अवस्थित है, अपने स्वरूप से कभी भी विचलित नहीं हुआ है, वो कौन है? महान तम विभूम आत्मानम मत्तो धीरा न शोच मत्वा धीरो न शोचति। वो महान, वो महत आत्मा ही है, श्रुति कह रही है। महानतम, वो जो महान है, उस आत्मा को जो कि विभू है, व्यापक है, उस आत्मा को जान लिया तो धीरो न शोचती, वो जान लेने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो चार लोकों की यात्रा कर चुका है, बड़ा बुद्धिमान पुरुष है। मत्वा धीरो न शोचती, धीर पुरुष उस तत्व को, आत्मा को साक्षात्कार करके महान आत्मा को फिर शोक से निवृत्त हो जाता है। आत्मज्ञान का यही तो फल बताया। छांदोग्य के सप्तम अध्याय में सनत कुमार जी और नारद जी के बीच में बहुत सुंदर संवाद चला, तो नारद जी महाराज ने सनत कुमार जी से कहा, महाराज श्रुतम येव मे भगवत दृश्य अभ्यास करते शोकम आत्मवित। गुरुदेव, आप जैसे महान पुरुषों के मुखारविंद से मैंने सुना है कि जिसको आत्मा का ज्ञान होता है तरति शोकम, वो शोक को पार कर जाता, उसको शोक नहीं होता है। इसलिए चतुर्थ जो भूमिका होती है, वो उस भूमिका में पहुंच जाने पर, महत में पहुंच जाने पर, परमात्मा भाव में पहुंच जाने पर क्या होगा, तब उसके लिए पांचवी भूमिका आई है, पांचवां लोक आया है। मह के बाद में कौन सा लोक आता भाई? जन लोक आता है। जन शब्द का अर्थ होता है जन्म होना, प्रकट होना, और भूमिका में पंचम भूमिका है असंशक्ति। जब अनादि काल से अपने को जीव भाव से मान रहा था, देहात्मा भाव में पड़ा हुआ प्राणी था, आज अपने वास्तविक स्वरूप का जब बोध हुआ है, ज्ञान हुआ है, तब आज उसको ब्रह्म भाव में प्राकटन हुआ है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे गुरुजी का आज बोध दिवस है, सच्चा जन्मदिन तो वही है जब वो अपने में जन्म दे लेता है, अपने आप में आ जाता है, स्वयं में आ जाता है। इसलिए ये जन लोक है जहां पर ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठा होती है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, और अनात्मा मात्र से असंशक्ति कहीं उसकी आसक्ति नहीं रह जाती है। वो जीवन मुक्त की जो अवस्था है, जीवन मुक्त पुरुष में राग और द्वेष की निवृत्ति होती है, यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। जीवन मुक्त के कोई विशेष प्रकार के चिन्ह शरीर में निकल आते हो ऐसा नहीं है, मोर मुकुट लग जाते हो ऐसा नहीं है। उसका अर्थ है कि मुक्त पुरुष जो होता है उसमें राग और द्वेष दोनों की निवृत्ति हो जाती है। राग द्वेष की निवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि अनात्म मिथ्या जो पदार्थ है उनमें उनकी आसक्ति नहीं रह जाती। ध्यान दीजिए, ज्ञान होने के बाद, कल भी एक बात वहां स्वाध्याय में स्पिरिचुअल सेंटर में चली थी कि ज्ञान होने के बाद में जगत दिखाई पड़ेगा कि नहीं? नहीं दिखेगा। अरे भाई, दो आंख है हमारे पास, एक बाहर वाली है दूसरी भीतर वाली है। बाहर की आंख तो वैसा ही बताएगी जैसा बता रही थी, पर भीतर की आंख देखेगी कि ये जैसा दिख रहा वैसा है नहीं, मिथ्या है। तो फिर उसमें आसक्ति किस बात की? एक मृग प्यासा है और एक मनुष्य प्यासा है, दोनों ही किसी मरुभूमि में है। मृग को सामने दिखाई पड़ रहा है पानी भरा हुआ है, मरुमरीचिका का जल। गाड़ी चलाते हैं रोड पर, आधा किलोमीटर सामने दृष्टि जाती है तो पूरी रोड गीली गीली दिखाई पड़ती है। ऐसे मरुमरीचिका का जल होता है, मरुभूमि में पानी दिखाई पड़ता है। मृग दौड़ता है पानी पीने के लिए, पर एक बूंद मिलती नहीं। उसको एक मनुष्य प्यासा वो भी देख रहा है, लेकिन वो जानता है कि पानी दिख रहा है पानी है नहीं, वो दौड़ेगा नहीं। दिखता तो दोनों को ही है, मृग को भी दिखता और मनुष्य को भी दिखता है, पर दिखने दिखने में बड़ा अंतर है। एक देख करके भी मिथ्या समझ रहा है और एक देख करके सत्य जान रहा है। जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, जीवन मुक्त को पुरुष को ये संसार दिखाई तो पड़ेगा लेकिन कहीं आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो मिथ्या है इसको निश्चय होता है, इसलिए कहीं आसक्ति नहीं करता है। वो ब्रह्म भाव में स्थित हो चुका है, उसकी प्राप्ति कर चुका है, उसको उत्पन्न कर लेता है। ये छांदोग्य उपनिषद में बहुत अच्छे ढंग से इसको अष्टम अध्याय में बताया है। एवं एव एष संप्रसाद अस्मात शरीरात समुत्थाय ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभी निष्पद्य थे। इस शरीर से ऊपर उठ करके और वो अपने स्वरूप से ही निष्पन्न हो जाता है। अपने स्वरूप में निष्पन्न होना ही ये जनलोक में जाना है, अपने स्वरूप की उत्पत्ति हो जाना, प्राप्ति हो जाना, स्थिति हो जाना, ये जनलोक में पहुंच गया, पंचम लोक में गया है। भूर भुव स्व मह जन और उसके बाद में छठा लोक आया है तपलोक। अब कौन सी तपस्या करेगा तपलोक में? चांद्रायण व्रत करेगा? क्या करना है? किसी गुफा में अन्न जल छोड़ करके आंख बंद करके तप करेगा? बोले नहीं, ये जो षष्ठ भूमिका में चला गया है पदार्थाभाविनी, ज्ञान की जो षष्ठ भूमिका है वो पदार्थाभाविनी है, उसको बताया गया है। ये है तपलोक। यस्य ज्ञानमयम तपः, मुंडक श्रुति में बोला है, उस परमात्मा का स्वरूप क्या है? वो ज्ञानमय है। अब छठी भूमिका में जाने पर उसको सब का सब ब्रह्ममय ही दिखाई पड़ेगा। वासुदेव सर्वम इति ये स्थिति हो जाती है पदार्थाभाविनी में। एक आत्मा को छोड़ करके दूसरा है ही नहीं। पदार्थ का अभावन, उसकी प्रतीति नहीं, उसको ब्रह्म ही ब्रह्म दिख रहा है। उस स्थिति में पहुंचने की तो बड़ी कल्पना ही की जा सकती है भाई। उसको शरीर की भी चिंता नहीं होती है कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे न रहेंगे। वो जड़ भरतवत हो जाते हैं, ऋषभ देववत हो जाते हैं, पदार्थाभाविनी। वो उनकी सच्चटी भूमिका है, यह है उनके लिए तप लोक। ज्ञानमय सब कुछ ज्ञान स्वरूप परमात्मा के अलावा उनको कुछ दूसरा नहीं दिखता। तब सप्तम लोक में जाता है, वह है ज्ञान की तुरिएगा। वो कौन है? सत्यलोक, वह है ब्रह्मलोक। वो ब्रह्मलोक का मतलब जो स्थानतः लोक बताए जा रहे हैं वो लोक नहीं है, बस सिर्फ वो ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। वहां द्वैत अद्वैत कहना भी नहीं बनता है। जिस स्थिति को पाने के लिए प्रतिदिन हम दौड़ करके आ रहे हैं, बस इन लोकों में गति करने के लिए शास्त्र कह रहा है, ये तुम्हारा असली मंजिल है, तुम्हारा स्थान है, वो सत्य तुम्हारा स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वही तुम्हारा असली लोक है। वहां पहुंचाने के लिए श्रुति बोल रही है। अब इसके विपरीत जिसकी यहां पर निंदा की जा रही है कि असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाहा। वो असुर संबंधी लोक है। देखो सुर तो पहुंच गए सत्य लोक में, लेकिन इसके विपरीत असुर कहां जाएंगे? जाना है क्या किसी को? तो फिर क्या जानना? न जाना पड़े इसके लिए जानना है, कहीं कदम गलत दिशा में न चला जाए इसके लिए जानना है। कल देखेंगे कि अधोलोक क्या है। जो असुरों से संबंधित संबंध रखता है उसका विचार करके कल हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो आज एक विशेष खुशी है हमारे लिए, अभी जनलोक आया ना है? तो जनलोक का यह अर्थ नहीं है कि वो सारा कुटुंबी लोक सब इकट्ठे जहां जन्म हो रहा हो। जनलोक का अर्थ है अपने स्वरूप में, अपनी स्थिति में उत्पन्न होना, अपने स्थिति में आ जाना है? और अपने स्थिति में आने का अवसर कहां मिलता है? इस भूलोक में ही मिलेगा, इस मनुष्य शरीर में ही मिलेगा, बाकी अन्यत्र कहीं सुविधा नहीं है। तो जो ऊर्ध्व लोक का पहला लोक है मनुष्य शरीर, जहां से हम सत्य लोक तक जा सकते हैं, वो शरीर का कितना महत्व होगा आप सोचिए। इसलिए मानव शरीर की शास्त्रों में सर्वत्र महिमा गाई गई है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य का जो शरीर है ये साधन धाम है, ये सत्य लोक तक जाने के लिए एक द्वार है, मोक्ष का द्वार है मनुष्य शरीर है। तो इस जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होना बड़ी सौभाग्य की बात होती है। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब कहीं मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, बहुत जन्मों का पुण्य उदय होने पर, अनेक जन्म संसिद्ध हो, कई जन्मों की साधना करने पर, और वो साधना मनुष्य शरीर से होती है। ऐसा दुर्लभ शरीर जिसको भी मिला है उसके शरीर का बड़ा महत्व है। और आज इस संसार में हम सब जितने भी शरीर को लेकर के बैठे हुए हैं, इस भूमि में बैठे हैं, कभी न कभी शरीर का जन्म हुआ है, लेकिन वो लोग कितने धन्य हैं जो इस शरीर को एक सही दिशा में लेकर के सदुपयोग कर रहे हैं, सत्य लोक के लोग की ओर अग्रसर होते हैं। आज हमारे बीच में है एक 70 साल के जवान को खड़ा करना चाह रहे हैं। जवान 70 साल के हैं? 70 साल के जवान होते हैं कि वृद्ध होते हैं? आप देख करके देख लेना, 70 साल का बिल्कुल जवान है। यदि वो जींस पहन करके आते तो ऐसा लगता है कि शायद शादी की तैयारियां हो रही होगी। हमारे गिरीश भाई, सचमुच में आज उनका जन्मदिन है और उसकी हम सब लोग उनको बधाई देते हैं। देखो ये जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने सोचा कि गिरीश भाई को जन्मदिन पर क्या प्रसाद दूं। ब्रह्मचारी को कहा तो कहा, स्वामी जी माला पड़ी हुई है, जब जवान 70 साल के हो गए हैं तो वह माला पकड़ने का समय तो सेवा में सत्कार में लगे हैं। तो मैंने सोचा कि देखो एक माला स्फटिक की और एक रुद्राक्ष की है, और दोनों माला एक विशेष संदेश दे रही है। स्फटिक पत्थर की विशेषता आप जानते हैं, वो शुद्ध होता है, वो वेदाग होता है और सरस्वती जी की पसंद माला होती है। इसलिए जहां सत्व गुण की सत्व आपत्ति जो होती है, अभी चर्चा सुन रहे थे प्रवचन में, वो अंतकरण की अत्यंत जो विशुद्ध अवस्था है, चित्त की जो वेदाग अवस्था है, उस स्थिति को पाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए नित्य निरंतर जैसे एक वर्दी पहन करके पुलिस वाला खड़ा होता है तो उसको ये प्रेरणा मिलती रहती है कि मेरा कर्तव्य रक्षा का है, व्यवस्था का है, क्योंकि मैं पुलिस वाला हूं, होता है। इसी प्रकार से जो माला होती है वो ये संदेश देती है कि अपने चित्त को, अपने मन को बिल्कुल इस स्फटिक की तरह निर्मल बना करके रखना है, अत्यंत पवित्र और शुद्ध बना करके रखना है। हाथ में हथियार एक कर्तव्य की प्रेरणा देता है, तो ये भी एक हथियार है जो अपने साधना की प्रेरणा देता है, सात्विकता की प्रेरणा देता है। और उसके बाद में एक आती है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष माला आप जानते हैं किसको पसंद है? गिरीश को पसंद है माला, गिरीश को पसंद है ना। गिरीश कौन है? भगवान शिव। तो जो गिरीश को पसंद है उनकी माला होनी चाहिए। भागवत में आया विद्या कामस्तु गिरीशम, जिसको ब्रह्म विद्या की कामना हो वो गिरीश की अर्चना करे, शिव की अर्चना करे, शिव का ध्यान करे, शिव का जप करे। इसलिए शिव को जो पसंद रुद्राक्ष है, वो दोनों चीज चित्त स्फटिक की तरह रहे और लक्ष्य उस शिव तत्व की ओर रहे। इसके लिए आज आप सभी की ओर से मैं चाहता हूं कि हमारे गिरीश भाई को आशीर्वाद के रूप में थोड़ा माल्यार्पण करवाएंगे। गिरीश भाई आए, साथ साथ पूरा जीवन इन पुष्पों की तरह खिला रहे, प्रसन्न रहे और इतना हल्का रहे। पुष्पहार कितना ही बड़ा हो, गले में डाल दो, किसी को बोझ महसूस नहीं होता है। अपना जीवन इतना ही हल्का बना रहे, समाज के लिए उपयोगी बना रहे। मंगल कामना।